सभी भक्तों का स्वागत है आज के गीता अमृत कार्यक्रम में। सुनाई दे रहा आवाज पीछे तक? तो मेरे ख्याल से काफी अरसे बाद गीता अमृत हो रहा है, एक महीना शायद ज्यादा हो गया। तो तीसरा अध्याय कर्म योग की व्याख्या और तीसरे अध्याय का ये अंतिम चरण है जहां अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत की व्याख्या करते हुए काम की परिभाषा बता रहे हैं। और अर्जुन का ये प्रश्न था जिसके उत्तर में भगवान ये तीसरे अध्याय का अंतिम चरण दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न क्या था? अथ केन प्रयुक्तोयम् पापम चरति पुरुष अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलाद इव नियोजितः, कि बिना इच्छा के बलपूर्वक वो कौन सी शक्ति है जिसके कारण एक जीव पाप कृत्य में लगता है। और इस प्रश्न का जो जवाब है अब भगवान पूरे ये जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय के उसके द्वारा दे रहे हैं। तो हमने ये समझा भगवान की व्याख्या द्वारा, भगवान कह रहे हैं कि ये जो काम वासना है, काम एष क्रोध एष रजो गुण समुद्भव महाशनो महापापमा, महान शत्रु है जीव का और महापाप में लगाता है। तो ये दो शब्दों को लेते हुए महान शत्रु और महापापमा भगवान व्याख्या किए। श्लोक क्रमांक 38 में भगवान ने इसी काम शत्रु के तीन आवरण बताए। ध्यान में है आपको? काम शत्रु के तीन आवरण। सबसे पहला आवरण अग्नि एवं धुआं, दर्पण एवं मैल, शिशु एवं गर्भ। धूमेना व्रियते वहनेर यथोल बेना वृतो। तो इस 38वें श्लोक में भगवान ने बहुत सुंदर उपयुक्त उदाहरण लिए समझाने के लिए कि कैसे किसी ज्ञानी पुरुष का ज्ञान ये काम वासना ढक लेता है। तो श्रील प्रभुपाद का जो तात्पर्य है, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि अग्नि एवं धुआं ये जो उदाहरण है ये मनुष्य योनि के संदर्भ में भगवान ने दिया है, और दर्पण एवं मैल ये उदाहरण जानवर योनि में, शिशु एवं गर्भ ये उदाहरण वृक्ष योनि में। तो आवरण की जो स्थिति है उसके अनुसार उदाहरण दिया गया है। तो यहां पर हमें ये तसल्ली ले लेनी चाहिए कि हम मनुष्यों के ऊपर काम वासना का आवरण बाकी योनियों की तुलना में कम है, सबसे कम है। वी शुड फील अ लिटिल कंफर्टेड बाय कृष्णाज वर्ड्स, नॉट येट। अब उसके पश्चात जो हमने अपने पिछले सिटिंग में श्लोक लिया था 3.39, काम शत्रु के चार प्रकार, जिसके अंदर भगवान कह रहे हैं कि ये काम शत्रु एक आवरण एक जीव के ज्ञान के ऊपर डालता है, नित्य वैरी है, काम रूपेण है, दुष्पूरेण है। काम रूपेण भगवान बोल रहे हैं कि बहुत सुंदर है ये काम वासना हालांकि शत्रु है परंतु बहुत सुंदर शत्रु है, अच्छा दिखने वाला शत्रु। अब देखिए, मान लीजिए हम जानते हैं कि अगला व्यक्ति हमारा शत्रु है परंतु वो यदि बहुत सुंदर दिख रहा हो तो हम कुछ समय के लिए थोड़ा असमंजस में पड़ जाते हैं कि इस पर प्रहार करूं या न करूं, या ये सुंदर शत्रु मुझ पर प्रहार करेगा या नहीं करेगा। तो काम रूपेण जो भगवान बोल रहे हैं, ये एक जो इसका इसकी प्रकार है, काम वासना के एक प्रकार है काम रूपेण, बहुत सुंदर है। और उसके साथ साथ जब कोई इसको संतुष्ट करने जाता है तो चाहे कितने भी जतन कर ले, वो अग्नि के समान है, उसमें कितना भी ईंधन डाले, ये अग्नि कभी संतुष्ट नहीं होने वाले। इसलिए भगवान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दुष्पूरेण अनलेन च, कि ये अग्नि के समान है। अनलेन का अर्थ है अग्नि के समान है ये काम वासना। तो अब ये था रिकैप, क्योंकि काफी अरसा हो गया, इसलिए ये अब तक का रिकैप था। और आज का श्लोक वो इस प्रकार से है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानम् उच्यते एतैर्विमोहत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तो यहां भगवान अब इस काम वासना की जो प्रक्रिया है, किस प्रकार से काम वासना अधिष्ठित होता है किसी जीव के अंदर, जैसे कि मंदिर के अंदर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, हाल ही में हमने ललिता विशाखा की प्राण प्रतिष्ठा की, तो भगवान बता रहे हैं कि काम वासना इस शरीर रूपी मंदिर के अंदर अपनी प्रतिष्ठा कराता है। और ऐसे ऑल्टर पकड़ता है वो प्रतिष्ठा के लिए, तो वो कौन सा ऑल्टर है या कौन कौन से ऑल्टर हैं जहां पर ये काम वासना ने अपने आप को प्रतिष्ठित किया है, वो भगवान आज के श्लोक में बता रहे हैं। तो इंद्रियाणि मनोबुद्धिर्, तीन जगह इंद्रिय मन और बुद्धि, जैसे यहां पर भगवान भी वो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, अस्य अधिष्ठानम् उच्यते। अधिष्ठानम् का अर्थ है प्रस्थापित करना, इंस्टॉलिंग वन सेल्फ, और फिर अपने आप को अधिष्ठापित करने के पश्चात, कहां अधिष्ठापित करने के पश्चात, तीन जगहों पर, इंद्रिय मन और बुद्धि, उसके पश्चात बैठा नहीं रहता ये काम वासना। ऐसा नहीं कि बस अब शांति से मैं ऑल्टर पे बैठा रहूंगा, नहीं, एतर विमोहत्येश, कि विमोहित करता है जीव को, उसकी व्याख्या हम करेंगे विमोहित होना, और उसके ज्ञान को आवृत्त कर देता है, उसके ज्ञान को ढक देता है। तो ज्ञान को ढक देना, विमोहित करना, अपने आप को अधिष्ठातित करना, जिसको कहते हैं ऑल राउंड अटैक, डिफेंस में हमको सिखाया जाता था कि कैसे हर कोने से अटैक करो शत्रु के ऊपर। तो ये बहुत पावरफुल श्लोक है जिसमें भगवान काम वासना का ऑल राउंड अटैक बता रहे हैं, परफेक्ट अटैक बाय लस्ट। तो अनुवाद श्रील प्रभुपाद का इस प्रकार से है, इंद्रियां मन तथा बुद्धि इस काम के तीन निवास स्थान हैं, इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो मानो भगवान एक होता ना बर्ड्स आई व्यू कि ऊपर से शत्रु को देख रहे हैं कि कैसे शत्रु प्रवेश कर रहा है, सीमा पार करकर बॉर्डर पार करकर शत्रु प्रवेश कर रहा है और प्रवेश करकर सबसे स्ट्रैटेजिक पोजीशंस ले लिया है शत्रु ने। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में वर्ड यूज करते हैं स्ट्रैटेजिक पोजीशंस। लस्ट हैज टेकन ओवर द मोस्ट स्ट्रैटेजिक पोजीशंस कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान हमारे शरीर के अंदर वो इस काम वासना ने ले लिया या शत्रु ने, काम शत्रु, भगवान इसको शत्रु कह रहे हैं तो शत्रु ने ले लिया। तो भगवान मानो वो बर्ड्स आई व्यू दे रहे हैं हमको कि देखो कैसे कैसे इसने कौन से पोजीशंस ले लिए हैं और वहां बैठे ये कर क्या रहा है, दोनों बता रहे हैं भगवान। तो हमने हमारे पिछले सिटिंग में कुछ ये मुद्दे लिए थे, एक टॉपिक लिया था हमने हाउ क्यूपिड मेड अ स्ट्यूपिड आउट ऑफ मी। फिर हमने एक उदाहरण लिया था जिसका कनेक्शन आज के श्लोक से भी है, एक सुंदर कोट है, लस्ट इज लाइक एन आर ग्लास वेयर द हार्ट गेट्स फिल्ड विथ लस्ट व्हाइल द हेड गेट्स एम्प्टी। व्हेन द हार्ट गेट्स फिल्ड विथ लस्ट वन लूजेस वन्स इंटेलिजेंस। सो आर ग्लास इज लाइक दैट, व्हेन द बॉटम पोर्शन gets filled, the top portion has to get empty. So lust is like that. तो अब प्रश्न ये है, जैसे यहां पर लिखा गया है, are we rolling a red carpet for lust when we should be turning on red light? दोनों में difference क्या है? एक है red carpet, red carpet किस लिए बिछाया जाता है? किसी का स्वागत करते हैं तो उसको रेड कारपेट वेलकम दिया जाता है। और रेड लाइट कब जलती है? जब उसको खतरे की लाइट बोलते हैं, खतरे की लाइट। तो दोनों रेड है लेकिन हो क्या रहा है, यहां पर भगवान बता रहे हैं इंस्टेड ऑफ टर्निंग द रेड लाइट ऑन इट सीम्स दैट द कंडीशन्ड लिविंग एंटिटी इज रोलिंग अ रेड कारपेट वेलकम फॉर लस्ट। तो ये सब देखते हुए आज के चर्चा के विषय हमारे इस प्रकार से रहेंगे। आज के श्लोक का संबंध है 38वें श्लोक से, काम शत्रु के तीन निवास स्थान जो भगवान ने बताए हैं उसकी व्याख्या क्या है, तीनों स्थितियों में जीव को क्या करना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रश्न कि इंद्रिय को जो काम ने पकड़ लिया है, मन को, बुद्धि को, इन तीनों स्थितियों में हमें क्या करना चाहिए। बहुत सुंदर व्याख्या बलदेव विद्याभूषण देते हैं इसके संदर्भ में। आज के श्लोक में ज्ञान शब्द का अर्थ क्या है, विमोहन शब्द की व्याख्या। तो सबसे पहले श्लोक क्रमांक 38 से आज के श्लोक का संबंध, कोई अनुमान लगा सकता है? एनी गेसेस व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ टुडेज वर्स विथ वर्स 38? 38 में क्या भगवान ने कहा? तीन भगवान ने उदाहरण लिए थे, हमने उसकी चर्चा की रिकैप में। तीन उदाहरण, अग्नि, दर्पण और गर्भ। तो काम वासना के तीन प्रकार के आवरण भगवान ने श्लोक क्रमांक 38 में बताए, थ्री कवरिंग्स ऑफ लस्ट। और आज के श्लोक में काम वासना के तीन प्रकार के निवास स्थान बताएं। तो दोनों नंबर कितने हैं? तीन। 38 में भी तीन नंबर भगवान, तीन उदाहरण दिए हैं, आज भी भगवान तीन नंबर लिए हैं, निवास स्थान और 38 में आवरण। तो बहुत सुंदर हमारे आचार्य बलदेव विद्याभूषण इसका कंपैरिजन बताते हैं कि 38वें श्लोक के जो तीन आवरण हैं, एक एक किसके संदर्भ में हैं, जो आज के श्लोक में तीन निवास स्थान हैं, इनका एक एक का संबंध है एक एक आवरण से. दे आर करस्पॉन्डिंग टू ईच कवरिंग द थ्री सिटिंग प्लेसेस ऑफ लस्ट. तो यदि हम सबसे पहले ये चीज समझ लें कि आज के श्लोक में तीन निवास स्थान ये बताए गए हैं, तो भगवान जब कह रहे हैं इंद्रियों के विषय में, तो भगवान क्या कह रहे हैं? पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय में. पांच ज्ञानेंद्रियां हमारी कौन कौन सी हैं? आंखें, ये नाक, जिह्वा, कान, त्वचा. इनको ज्ञानेंद्रिय क्यों कहा गया है? क्योंकि इन इंद्रियों के द्वारा हम दिव्य ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं. भौतिक ज्ञान तो करते ही हैं, इन इंद्रियों के द्वारा हम दिव्य ज्ञान भी अर्जित कर सकते हैं. इसलिए भगवान कह रहे हैं कि काम वासना ने अपना पहला निवास स्थान बनाया है पांच ज्ञानेंद्रिय, कि जो सबसे बेसिक, जिसको कहेंगे एंट्रेंस, हमारे ज्ञान, हमारे अंदर ज्ञान जाने का जो एंट्रेंस है, एंट्री पॉइंट, उसको रोक दिया है. काम वासना ने फर्स्ट गेट पे ताला मार दिया, ज्ञानेंद्रिय के ऊपर कब्जा कर लिया. और भगवान जो कह रहे हैं आवृत्य, ढक दिया हमारे ज्ञान को. तो फिर इन इंद्रियों, ये जो इंद्रियां हमको दी गई हैं, ज्ञानेंद्रियां, ये वास्तविक रूप में दिव्य ज्ञान अर्जित करने के लिए दी गई हैं. वी हैव बीन गिवन दिस नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस टू एक्वायर ट्रांसेंडेंटल नॉलेज. सो व्हाट लस्ट हैज डन दैट इट हैज कैप्चर्ड द वेरी बेसिक मीन्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. इट हैज कैप्चर्ड दैट, कवर्ड इट. और फिर मन, खैर बहुत शक्तिशाली, मन के विषय में तो एक अलग ही सेमिनार हो सकता है कि कैसे इस मन को कब्जे में लाकर काम वासना क्या कर रहा है. और फिर बुद्धि. तो ये तीन निवास स्थान काम के. अब श्लोक क्रमांक 38 से जो हमने संबंध समझने की कोशिश की, तो सबसे पहले अग्नि एवं धुआं. तो बलदेव विद्याभूषण, जो पहला आवरण भगवान ने बताया श्लोक क्रमांक 38 में, बलदेव विद्याभूषण उसकी तुलना या उसको आज के श्लोक में जो भगवान पांच ज्ञानेंद्रियों के विषय में बता रहे हैं कि जो स्थान बन चुके हैं काम वासना के, उसके संदर्भ में भगवान ने कहा है. कैसे? क्योंकि एक एक लेवल इंटेंसिटी की बढ़ रही है, निवास स्थान में भी और आवरण में भी. जैसे हमने 38वें श्लोक में यह समझा था कि आवरण की इंटेंसिटी बढ़ रही है. जैसे अग्नि को जब धुआं आवृत करता है तो अग्नि दिखाई दे रही है, हालांकि धुआं आवृत कर रहा है. Although smoke is covering fire, but still fire is visible. तो आवरण कम है थोड़ा. उसी प्रकार से जब कामवासना ज्ञानेंद्रियों के ऊपर कब्जा करता है, तो ज्ञानेंद्रियां जो हैं, वो बहुत समय तक कामवासना से संतुष्ट नहीं रहती. ये कहने का तात्पर्य है बलदेव विद्याभूषण. थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से सुनिए आप, कि ज्यादा समय तक इंद्रियां जो हैं, क्योंकि इंद्रियों के अंदर कैपेसिटी है, एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है. जैसे मान लीजिए कि किसी को खाने की बहुत इच्छा है, तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए जब वो खाना प्रारंभ करता है, तो जैसे वो खाना प्रारंभ करता है, धीरे धीरे वो कहां पर अग्रसर हो रहा है? एक सैचुरेशन पॉइंट की तरफ जा रहा है। तो उसकी कैपेसिटी कम होती जाती खाने की, जितना खा रहा है उतनी कैपेसिटी कम होती जा रही है। तो काम वासना भी वैसे ही है, इंद्रियों से जितना भोग करने की करने का प्रयास करता है उतनी उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। तो यहां पर एक एडवांटेज है, बलदेव विद्याभूषण क्या बोल रहे हैं, एडवांटेज क्या है कि हालांकि काम वासना ने कब्जा कर लिया है हमारे इंद्रियों के ऊपर, परंतु इंद्रियों बाय डिफॉल्ट इंद्रियां जो हैं उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, और काम वासना की जो भूख है वो अनलिमिटेड है। लेकिन इंद्रियों का वो जो इंद्रियां ईंधन देना चाहे भी काम वासना को, तो उसके पास उसका पेट्रोल पंप बहुत छोटा है इंद्रियों का। तो इसलिए बलदेव विद्याभूषण इसकी तुलना अग्नि और धुएं से कर रहे हैं। जैसे अग्नि और धुएं का जो आवरण है उसका इंटेंसिटी कम है, वैसे ही ये जो प्रहार है उसका इंटेंसिटी कम है इंद्रियों के ऊपर। फिर दर्पण एवं मैल। अब दर्पण के ऊपर जब मैल चढ़ जाता है तो अब दर्पण को नहीं देख सकते आप। जैसे कि धुएं के बीच से आप अग्नि को देख सकते हैं, परंतु मैल चढ़ने के बाद दर्पण को नहीं देख सकते, तो आवरण गहरा हो गया। द कवरिंग हैज बिकम मोर थिक इन द सेकेंड एग्जाम्पल। और मन का जो उदाहरण भगवान ने आज के श्लोक में दिया है, इसका संदर्भ उससे है कि जब काम वासना मन के ऊपर कब्जा कर लेता, अगर केवल इंद्रियों के ऊपर कब्जा कर लेता तो बहुत आसान था, परंतु मन के ऊपर कब्जा करने के बाद अब स्थिति थोड़ी मुश्किल हो गई। इट हैज बिकम मोर डिफिकल्ट फॉर द लिविंग एंटिटी टू विन ओवर लस्ट, बिकॉज लस्ट हैज ऑल्सो कैप्चर्ड अ मोर स्ट्रेटेजिक पोजिशन कंपेयर टू सेंसेस। इट हैज कैप्चर्ड द माइंड विच इज द लीडर ऑफ द सेंसेस। और फिर अंतिम उदाहरण शिशु एवं गर्भ। तो शिशु और गर्भ का जो उदाहरण है वो भगवान ने दिया था कि काम वासना का सबसे गहरा आवरण, द थिकेस्ट कवरिंग ऑफ लस्ट। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो शिशु है वो दिखाई तो दे ही नहीं रहा है, और उसके जो मूवमेंट्स हैं वो पूरे रेस्ट्रिक्टेड हैं अंदर। तो इसलिए इसके संदर्भ में भगवान ने बुद्धि का उदाहरण दिया है आज के श्लोक में कि जब काम वासना किसी की बुद्धि को हर लेती है, तो दूसरे अध्याय का जो श्लोक आपको याद होगा, ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामात, कामात क्रोधो भी जायते। उसके अंदर जो इसके अगला श्लोक है, क्रोधोत भवति सम्मोहात, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रमसात बुद्धि नाशो। जब बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, जो फाइनल अटैक वो बुद्धि के ऊपर, बुद्धि का नाश हो गया तो प्रणश्यति, फिर जीव उसका पतन निश्चित है। तो इसलिए जो सबसे अल्टीमेट अटैक काम वासना ने इन तीनों की तुलना में अगर हम देखें तो बुद्धि के ऊपर अटैक कर किया। और वो क्यों? क्योंकि सबसे पहले अगर हम हमारे शरीर का एक परिचय पूछें कि ये शरीर है क्या, अगर पूछा जाए कि ये शरीर क्या एक ढांचा है, इज जस्ट अ स्ट्रक्चर। श्रीमद् भागवत में इस शरीर का विश्लेषण करते हुए 11वें स्कंद में बताया गया है कि ये शरीर के अंदर है क्या। जैसे कि आप एक कमरे का ढांचा देखो जिसके अंदर बीम्स, क्रॉस बीम्स हैं, फिर उसके ऊपर कॉन्क्रीट है, वैसे ही ये फ्लैश, ये जो मांस है और ये मांस के अंदर क्या है, जैसे कि ये दीवार के अंदर आप सलिए देखोगे, दीवार तोड़ो अंदर क्या है, सलिए हैं, वो सलिए के अंदर वो कॉन्क्रीट डालकर ये दीवार बनी है। तो वैसे ही हमारा शरीर भी, 11वें स्कंद में बताया गया है, हमारा शरीर भी उस प्रकार से बना हुआ कि ये मांस क्या है, ये सब वो कॉन्क्रीट है, वो घमेले में माल बनाते हैं ना वैसे, वो घमेले में ये मांस का माल बना बना के ये अंदर जो कंकाल, अंदर क्या है हमारे अंदर स्केलेटन, जो स्केलेटन है वो क्या है, दे आर नथिंग बट बीम्स एंड क्रॉस बीम्स, ये बताया गया। और उसके ऊपर ये सब कुछ माल डाल के कुछ समय के लिए ये ढांचा चल रहा है, इधर उधर घूमता रहता है। और बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा मतलब जैसे लकीरें आती है ना दीवार के ऊपर कि अभी लीकेज हो रहा है, अभी क्रैक्स आ रहे हैं, तो वैसे ही वो चेहरे के ऊपर क्या झुर्रियां, चेहरे के ऊपर झुर्रियां, सब हमारे चमड़ी के ऊपर झुर्रियां, तो क्या है ये सब क्रैक्स आ रहे हैं, अभी वो सब लीकेज चालू हो जाता है सब जगह से, यहां वहां से सब लीकेज होता रहता है, वो बुढ़ापा है। तो ये शरीर है क्या, एक श्लोक हम लेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है 11वें स्कंद का, जिसके अंदर इस शरीर को एक बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा दी गई है इस शरीर की। इस शरीर को उस श्लोक में इंद्रियवान कहा है। संस्कृत में इस शरीर के अलग अलग उपाधियां दी गई हैं, परंतु उस श्लोक में, हम वो श्लोक लेंगे आगे, उसके अंदर इस शरीर को इंद्रियवान कहा, जैसे कि भगवान, वान का अर्थ है धारण करने वाला, भग का अर्थ है ऑपुलेंसेस, तो अलग अलग ऐश्वर्यों को धारण करने वाले भगवान हुए। और हम लोग भी एक वान हैं, कौन से वान हैं, इंद्रियवान, हमने क्या धारण किया है, इंद्रियों को धारण किया है, जैसे भगवान ने षड ऐश्वर्यों को धारण किया है, हमने ये पांच इंद्रियों को धारण किया है, और मन को भी एक इंद्रिय बोला गया है, तो हम भी षड ऐश्वर्य पूर्ण हो सकते हैं, ये मन और पांच इंद्रियां। तो इसलिए 11वें स्कंद में हमको इंद्रियवान बोला है कि ये शरीर क्या है, बस इंद्रियों का एक संकलन है। अब देखिए, जब भी हम किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग में लगना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ना कि हाँ हम हमारे शरीर को लगा रहे हैं, परंतु सारा शरीर नहीं इंद्रिय भोग करता, इनमें से गिने चुने जो हमारी पांच इंद्रियां हैं बस वही लगती हैं। अभी अगर मैं आपको पूछूं कि आप अभी बैठे हो, कभी आपको परम आनंद हुआ, आपकी एड़ी, पैर की एड़ी को कोई ऐसा इंद्रिय भोग आपने दिया कि आप एकदम भाव विभोर अवस्था में चले गए? डू यू फील दैट यू आर कंप्लीटली ग्रेटिफाइड बाय योर एल्बो? नहीं, कुछ स्पेसिफिक इंद्रियां होती हैं, जैसे हमारे पांच ज्ञान इंद्रियां, तो स्पेसिफिक इंद्रियां जो हैं वो हमें कुछ समय के लिए स्पेसिफिकली कुछ भोग देती, और वो भी बहुत कंडीशनल है। अब जैसे देखिए कि मान लो हमारी आंखें, अब हम हमारी आंखों से कुछ भोग वस्तु को देखते हैं, मान लो हमने कोई अच्छा गार्डन या कोई बाग भवन आंखों से देखा, या कोई थिएटर में पिक्चर देखने गए आंखों से कोई सुंदर दृश्य देखने के लिए, तो ये आंखों को भोग मिल रहा है उसको। अब यदि पूछा जाए कि क्या ये आंखें इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सकती अपने आप, खुद से आत्मनिर्भर होकर ये आंखें, क्या वो भोग वस्तु जो भी है, रूप, आंखों के लिए क्या है भोग वस्तु, रूप है, तो क्या उस रूप को आंखें अपने आप इंडिपेंडेंटली एंजॉय नहीं कर सकती? जैसे लोग एक दूसरे की आंखों का गुणगान करते हैं, है ना, ये पिक्चरों के जो गाने होते हैं, झील सी नीली आंखें, तुम्हारी सागर जैसी आंखें, ऐसे आंखों का गुणगान। तो मान लो कि कोई अगर किसी की आंखों का गुणगान कर रहा है कि तुम्हारी आंखें एकदम सागर की तरह है, मैं तो लट्टू हूं तुम्हारी आंखों के ऊपर, बस तुम्हारी आंखों पर लट। तो मान लो कि वो आंखें निकाल के उखाड़ के दे दे, ले ले, ले रख ले, तो भयानक लगेगा। वो जो अभी इतनी कविता रची थी इस आंखों के ऊपर, वो अब वो कविता नहीं होगी फिर। वो अब जैसे लोग बालों का गुणगान करते हैं कि तुम्हारे जुल्फें काली घनी जुल्फें, तो मानो कोई जुल्फों का गुणगान कर रहा है, तो वो जुल्फें काट के पैक करके उसको बर्थडे गिफ्ट ले, तो एक साल से मेरी जुल्फों का गुणगान कर रहा है, ले ले रख ले बर्थडे गिफ्ट मेरी जुल्फ। तो वो आंखों का जो महत्व है वो तब तक है जब तक कि वो आंखें अपने जगह पर स्थित है, जहां पर होनी चाहिए उसे। अब सोचिए कि ये जो आंखें ये हमारे सॉकेट के अंदर स्थित हैं, वहां से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो लोग फिर बोल देते हैं कि कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो सोचो पूरी बाहर आने के बाद क्या हाल होगा। तो यहां पर ही थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है तो वो जो सुंदरता है वो चली जाती है। तो वो आंखों के अंदर जो सुंदरता है वो सुंदरता है जब तक कि आंखें वो कनेक्टेड है इस चेहरे से, है ना। यहीं पर ही उसके निर्धारित स्थान पर उस आंखों को होना चाहिए। एज लॉन्ग एज द आईज आर कनेक्टेड टू द फेस एंड इट्स स्पेसिफाइड पोजिशन, द आईज लुक ब्यूटिफुल। फिर पूरे चेहरे को लो, उसका भी कनेक्शन पूरे बॉडी से सही समय जगह पर होना चाहिए, तब जाकर वो चेहरा भी सुंदर दिखता है। ऐसे अगर आप देखो बालों का सही कनेक्शन, आंखों का सही कनेक्शन, चेहरे का सही कनेक्शन, हर हमारे जो अंग है उसका सही कनेक्शन, और ये पूरे ये इन सभी अंगों से जो हमारा शरीर बना है इसका कनेक्शन किससे होना चाहिए? आत्मा से। मान लो कि सब कुछ कनेक्शन बराबर है लेकिन अंदर आत्मा नहीं है, तब वो आंखें भी भयानक लगेंगी, वो बाल भी भयानक लगेंगे, सब कुछ भयानक लगेगा। तो सब कुछ इंटैक्ट है लेकिन अंदर आत्मा नहीं है, मतलब वो है क्या? उसके बाद उसको शव बोलते हैं। उसको फिर आप कविता नहीं रचोगे कि उसके बाद फिर हॉरर मूवी बनती है। तो हर एक का कनेक्शन प्रॉपर होना चाहिए तब जाकर। इसलिए हमको कंडीशनड लिविंग एंटिटी क्यों बोलते हैं? बिकॉज इवन अवर सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कंडीशनल। जब तक सब कुछ ठीक है, इंटैक्ट है, स्वस्थ है शरीर, तब जाकर वो थोड़ा इंद्रिय भोग भी उसमें हाँ अपेक्षित है। और ये सब कुछ जब तक आत्मा जो एक्टिवेट कर रहा है उससे कनेक्टेड है तब जाकर सब कुछ, नहीं तो कुछ फायदा नहीं इसका। इंडिपेंडेंटली ये सारे जो हमारे अंग हैं वो भयावह है। और उसमें भी जैसे कि हम एक बार चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अभी बैठे हैं, हम लोग कितनी बार सोचते हैं कि मुझे आज किडनी से कितना आनंद मिल रहा है। मतलब हम कितनी बार उसके बारे में सोचते हैं, जब उसमें अंदर कोई पत्थर चला जाता तब ध्यान में आता है, अरे बाप रे किडनी स्टोन हो गए, किडनी भी है मेरे को, एक नहीं दो दो है, उसमें इतने सारे पत्थर आ गए। नहीं तो कभी सोचते भी नहीं कि हमारे ये पूरे ढांचे के अंदर क्या क्या फिट है, किडनी भी है, लिवर भी है, वो ये गॉल ब्लैडर पैनक्रियास क्या क्या अंदर फिट है। जब तकलीफ होती तब समझ में आता कि हाँ ये सब है हमारे। और डॉक्टर बताता है ये देखो तुम्हारी दो किडनी, इसके अंदर ये गड़बड़ है, इसके अंदर लिवर के अंदर, अच्छा ये मेरा ही है। ये जो हमारा शरीर है इसको श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में क्या कहा गया है, इंद्रियवान, कि इंद्रियों से बना हुआ हम सबका ये शरीर, और इसलिए हम इसको खिला रहे, जिला रहे, पिला रहे, नहला रहे, पहना रहे, क्यों, क्योंकि ये इंद्रियां हमको संतुष्टि दे रही हैं कुछ हद तक, इसलिए। नहीं तो क्या है, मांस का लोथड़ा, बस इसको बोलते हैं ना, ढांचे के ऊपर मांस का लोथड़ा फेंक दिया गया है। कईयों का थोड़ा वो शेप ठीक है तो उसको फिर बोल देते हैं ये मिस यूनिवर्स हो गई, ये मिस इंडिया हो गई, ये मिस जो भी हो गई। तो 1945 की मिस यूनिवर्स का चेहरा देखिए, सो शी मस्ट हैव बीन मिस यूनिवर्स इन 1945, बट नाउ इन 2013 द वर्ल्ड मिसेज हर, फॉरगेट अबाउट मिस यूनिवर्स, द वर्ल्ड हैज मिस्ड हर। तो ये सब कुछ कंडीशनल है, वो श्लोक में बताया गया। तो इसलिए भगवान भी बता रहे हैं कि ये काम वासना भी जो इंद्रियों के ऊपर कब्जा किए हुए है वो भी टेम्पररी है, क्योंकि इंद्रियां ही टेम्पररी है हमारी। तो ये जो उदाहरण हमारे उपनिषद में दिया गया है, श्रीमद् भगवद गीता का एक चित्र है, ये उदाहरण शरीर रूपी जो रथ है, तो इससे आज के श्लोक को हम और भी अच्छे से समझ पाएंगे कि इसके अंदर ये जो पांच घोड़े हैं ये पांच इंद्रियां, जो लगाम है वो है मन, और सारथी वो बुद्धि, और जो यात्री पैसेंजर बैठा हुआ है वो आत्मा। तो अब काम वासना क्या कर रहा है, काम वासना क्या करता है कि सबसे पहले इंद्रियों के ऊपर कब्जा कर गया, मतलब घोड़ों के ऊपर कब्जा कर लिया। तो घोड़ों के ऊपर कब्जा कर लिया तो अब ये पांच घोड़े जो हमारे पांच इंद्रियां, तो काम वासना एक घोड़े को बोलता है तू उधर भाग, दूसरे को बोलता है तू इधर भाग, तो ये घोड़ा इधर भाग रहा है, ये घोड़ा उधर भाग रहा है, बीच वाले घोड़े को बोल रहा है तू रुक जा। तो सोचो क्या हालत होगी उस रथ की, वो काम वासना एक घोड़े को इधर, एक घोड़े को उधर, बाकी घोड़े को तू रुक जा, तो पूरा पथभ्रष्ट। उसको क्या हिंदी का जो शब्द है वो क्या है, पथभ्रष्ट, उस रथ को पथभ्रष्ट करता है ये काम। और बेचारा जो सारथी है वो सारथी कोशिश कर रहा है घोड़ों को लगाम के द्वारा नियंत्रित करने के लिए, तो काम वासना ने देखा अच्छा ये सारथी शायद नियंत्रित, तो इसके ऊपर भी कब्जा कर लो, तो सारथी के ऊपर कब्जा कर लिया तो लगाम के ऊपर भी कब्जा हो गया। लगाम क्या है, मन, तो बुद्धि, इसलिए बुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है, इसलिए बुद्धि पर कब्जा कर लिया तो लगाम पर कब्जा, लगाम पर कब्जा तो घोड़ों पर कब्जा, फिर पूरा रथ के ऊपर कब्जा हो गया, और बेचारा जो यात्री है आत्मा वो परेशान आत्मा बैठा है, क्या करे। तो इसलिए ये उदाहरण उपनिषद का, जिसके अंदर बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि एक व्यक्ति उसके शरीर मन और बुद्धि के द्वारा कैसे पथभ्रष्ट होता है। तो आज के श्लोक में एक महत्वपूर्ण मुद्दा भगवान ने स्थान महात्म्य बताया है। स्थान महात्म्य क्या होता है कि हमारा जो शरीर है या जो भी कुछ हम इस भौतिक संसार में करते हैं उसका महात्म्य या इंपॉर्टेंस अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है। देयर आर सर्टन थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट टू अस बेस्ड ऑन टाइम, जैसे कि मान लो कोई छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा जो है उसके जो बाल्यावस्था है, वो जो समय है, उस बाल्यावस्था की वजह से वो जो बच्चा है जो कुछ क्रिया करता है या जो कुछ वो सीख रहा है उसकी उसके टाइम के अनुसार वो बहुत उपयुक्त है। फिर वो जब बड़ा होता है, अब देखिए बड़ा होने के बाद, अभी जैसे यहां पे बच्चे भाग रहे थे, तो ये जो छोटे बच्चे भाग रहे थे हम लोग मायना नहीं कर रहे क्योंकि अभी उनका समय है। उनका समय ये नहीं कि बैठ के यहां पे वो गीतामृत सुने, नहीं समझ में आया, बड़ों को भी नहीं आता है बात, तो वो गड़बड़ है। अभी बड़े होने के बाद भी अगर हम यहां वहां भागते रहे टेम्पल हॉल में, अभी हम लोग सब अपने आप को वयस्क बोलते हैं ना, वी आर एडल्ट्स, तो मान लो कि वो जो जैसे बच्चे भाग रहे थे, हम में से कोई खड़ा होकर भागने लग जाए, मम्मी मम्मी बुलाने लग जाए, तो एक है समय का महात्म्य। यहां पर भगवान बोल रहे हैं स्थान का महात्म्य। तो स्थान का महात्म्य क्या है कि काम वासना ने तीन स्थान लिए, तो अपना जो महत्व है काम वासना ने स्थान के अनुसार सिद्ध किया, इंद्रिय मन और बुद्धि ये तीन स्थान को पकड़ लिए। तो हम इसके ऊपर थोड़ी चर्चा करेंगे कि स्थान महात्म्य क्या होता है। जैसे कि हमारी पांच इंद्रियां हैं, अब ये पांच इंद्रियां अलग अलग स्थान में जब जाती हैं, तो अलग अलग स्थान में जाने के बाद इंद्रियों के अंदर एक अलग अलग प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। अवर सेंसेस रिएक्ट ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द प्लेस वेयर द सेंसेस आर। जैसे मान लो कि हमारी पांच इंद्रियां मंदिर में आई, पहले तो हमने सिद्ध कर दिया शरीर क्या है, इंद्रियवान है ना, पांच इंद्रियां हमारी, तो हम हमारे इस पूरे ढांचे को, इंद्रिय के ढांचे को लाए मंदिर के अंदर, है ना, मंदिर के अंदर लाए। तो जैसे ही हम पांच इंद्रियां मंदिर के अंदर प्रवेश करती हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है इंद्रियों की। अब देखो साधारणतः मंदिर में प्रवेश करने के बाद भगवान को देखते लोग दंडवत करते हैं, अलग अलग उनके स्टाइल अलग अलग होते हैं लोगों के, आजकल कई ऐसे कर देते हैं, कोई फ्लाइंग किस भी देते हैं, लेकिन अपने आप जो इंद्रियां हैं वो एक उस स्थान के अनुसार अपनी प्रतिक्रिया करती है। वही पांच इंद्रियां किसी होटल में घुसेंगी तो वहां पर वो जाकर दंडवत नहीं करेंगे, वो जो उधर बैठा हुआ है गल्ले पे या वेटर को, नहीं, वहां पर वो इंद्रियां उनकी प्रतिक्रिया अलग शुरू हो जाएगी। दे विल स्टार्ट लॉन्गिंग फॉर समथिंग टू ईट। फिर वो पांच इंद्रियां किसी थिएटर में प्रवेश करते हैं, तो उसके अंदर एक इंद्रिय एक्टिवेट कि हाँ हमें कोई मूवी देखना है, तो आंखें कान ये एक्टिवेट होते हैं वहां। फिर इंटरवल के समय दूसरी इंद्रियां एक्टिवेट होती, चलो कुछ खाने के लिए, और द फाइव सेंसेस एंटरिंग इनटू अ कैसीनो। तो ये जो अलग अलग उदाहरण हैं, ये हम इसलिए लिए हैं, इसको कहते हैं स्थान महात्म्य, कि हमारे जो कर्म हैं वो स्थान के अनुसार भी परिवर्तित होते हैं, हमारी इंद्रियां कार्य करती हैं स्थान के अनुसार। जैसे कि कोई अगर मंदिर में कोई शराबी भी घुस जाए, तो कुछ हद तक वो जो उसकी आदत है शराब पीने की या सिगरेट पीने की, मंदिर में आने के बाद कम होंगी कुछ हद तक। हाँ, उसके अंदर मन के अंदर वो लालसा रहेगी कि कब बाहर जाऊं, तलब लग रही एक बीड़ी पीने की, उसके अंदर वो लग रही होगी, लेकिन एक स्थान में बैठने के बाद थोड़ा कंट्रोल उसके ऊपर अपने आप आने लगता है उसके इंद्रियों के ऊपर। तो ये स्लाइड से हम केवल ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी इंद्रियां स्थान के अनुसार क्या प्रभाव स्थान उस इंद्रियों के ऊपर लाता है, क्योंकि आज के श्लोक में भगवान निवास स्थान बता रहे हैं काम वासना के लिए। तो अब इसमें मैंने सोचा उदाहरण नलकुंवर और मणिग्रीव का, दशम स्कंद में नलकुंवर और मणिग्रीव इन्होंने एक अपराध किया, निर्वस्त्र अवस्था में वो स्नान कर रहे थे और स्त्रियों के साथ और नशापान किया हुआ था। केवल इतना ही उनका अपराध नहीं था, ये सब कुछ वो जो कर रहे थे, सबसे गहरा अपराध इनका क्या बताया गया था कि ये कैलाश में, कैलाश धाम में मंदाकिनी गंगा में कर रहे थे। जैसे कि कोई अगर मंदिर में यहां पर बैठा चिलम फूंक रहा है तो कैसा लगेगा, वही चिलम फूंक रहा है या सिगरेट पी रहा है, कहीं बाहर आप किसी उसको देखो कि पान पट्टी के दुकान पे, तो आपको इतना आश्चर्य नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे स्थान में, ऐसे पुण्य स्थान में अगर वो कुछ कर रहा है तो तुरंत उस अपराध की जो इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो नलकुंवर और मणिग्रीव, ये शिव अनुचर बताया गया है दशम स्कंद में कि एक तो शिव अनुचर, और शिवजी के अनुचर होने के बावजूद वहां पर कौन सी गंगा, वो भी स्वर्गीय गंगा, कैलाश धाम की मंदाकिनी गंगा में वो इस प्रकार का कृत्य कर रहे थे। इसके वजह से, उस स्थान के वजह से उनका अपराध, जो कि बोल सकते हैं 10 times बढ़ गया या 100 times बढ़ गया स्थान के वजह से। तो ये एक उदाहरण है कि स्थान के वजह से पाप का इंटेंसिटी बढ़ गया वहां पर। तो हमको डिफेंस में सिखाया जाता था कि परफेक्ट अटैक अगर शत्रु के ऊपर करना है तो बहुत से अलग अलग तरीके हैं, परंतु दो मुख्य जो एस्पेक्ट्स ध्यान में रखने, 2 major aspects इफ यू हैव टू मेक अ परफेक्ट अटैक ऑन द एनिमी, द फर्स्ट इज प्रॉपर पोजिशनिंग, आपका पोजिशनिंग बराबर होना चाहिए, एंड द सेकेंड इज प्रॉपर कैमोफ्लेजिंग। और आज के श्लोक में भगवान ने ये दो चीज बताई है कि काम वासना ने हमारे शरीर पर आक्रमण करने के लिए पोजिशनिंग बहुत बराबर लिया उसने, परफेक्ट पोजिशनिंग एंड परफेक्ट कैमोफ्लेजिंग। क्या मित्र बन के, शत्रु बन के अंदर उसने अपनी प्रतिष्ठापना नहीं की है, मित्र बन के। इसलिए तो सभी लोग लगे हुए हैं अपने इंद्रियों और मन और बुद्धि को कि हाँ लो क्या चाहिए तुमको, ये इंद्रियां उसको खिला रही हैं, मन भी उसको उसकी आरती उतार रहा है, बुद्धि भी सब कुछ कर रहा है, परफेक्टली पोजिशन्ड एंड परफेक्टली कैमोफ्लेज्ड हमारे शरीर के अंदर, इसको बोलते हैं परफेक्ट अटैक। अच्छा, इसके संदर्भ में यदि मैं आपको, आप लोगों ने ये खेल खेला होगा शतरंज, या जानते होंगे अगर नहीं खेला होगा चेस, तो शतरंज के अंदर एक मुख्य जो नीति, अगर आपको शतरंज के बहुत अच्छे खिलाड़ी बनना है तो एक बहुत बेसिक प्रिंसिपल चेस का क्या है, पोजिशनिंग। आप, आपके अगर जो भी वो वजीर है या आपका ऊंट है, घोड़ा है, जो भी हाथी है, उसका अगर आपने पोजिशनिंग बराबर रख दिया तो आप चेकमेट पोजिशनिंग से दे सकते। यू कैन किल दी अदर पर्सन किंग जस्ट बाय प्रॉपर पोजिशनिंग शतरंज के अंदर। तो ये उदाहरण को अगर हम लें तो उसके अंदर भी स्थान कहां पर आप रख रहे हो उसमें यही है, उसमें कोई गोली बारूद वगैरह नहीं, आपका पोजिशनिंग कहां रख रहे हो उसके द्वारा आप शत्रु पक्ष के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस उदाहरण से स्थान का महत्व। एक और उदाहरण ये बहुत ही रिलेवेंट उदाहरण है, यह है एक 3D मॉडल एड्स वायरस का, जो कि अगर हम कहें कि शत्रुओं में हमारे शरीर को मारने वाला अगर कोई बहुत खतरनाक वायरस है आजकल 21वीं सदी में, तो एड्स वाला। अब इसकी तुलना मैंने आज के श्लोक से काम वासना से की है कि ये जो एड्स वायरस है, ये एड्स वायरस ऐसा है कि जैसे आज भगवान कह रहे हैं कि काम वासना हमारे शरीर में इंद्रिय मन और बुद्धि में जाकर निवास स्थान लेता है अपना, वैसे ही ये एड्स वायरस हमारे शरीर के अंदर जाकर हमारे ही शरीर की शक्ति को लेकर हमारे शरीर को मारता है। एग्जैक्टली दिस एड्स वायरस इज लाइक लस्ट, इट टेक्स यू नो शेल्टर ऑफ आवर ओन बॉडी, uses up all the energy of our own body, creates an army inside to destroy our own body. ये इस प्रकार से काम, जैसे काम वासना आज भगवान बता रहे, strategic positions लेकर उसको अंदर से खाना। तो अगर हम एक एक भगवान जो बता रहे हैं और ये एड्स वायरस क्या काम करता है, अगर उसके एक एक मुद्दे को लें, तो सबसे पहले मेक्स बॉडी एज द रेसिडेंस। वो एड्स वायरस बाहर से अटैक नहीं करता, हमारे शरीर के अंदर घुस के अटैक करता है। उसी प्रकार से काम वासना हमारे शरीर के अंदर घुस के, इंद्रिय मन बुद्धि घुस के अटैक करता है। सेकेंडली यूजेज रिसोर्सेज ऑफ द सेम बॉडी, वो निहत्ता आता है, कोई अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं आता। ये उसको पता है कि इसके बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है उसको मैं यूज करूंगा। इसलिए एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। हमारे शरीर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको तोड़ता है। तो ये जो दूसरा मुद्दा है, यूजेस रिसोर्सेज ऑफ द सेम बॉडी, उसी प्रकार से काम वासना क्या करता है, हमारी इंद्रियों हमारे शरीर के अंदर बैठ के और हमारे प्लेट में खा के छेद करता है कि सब कुछ हमको ही लगाता है। चलो ये देखो, ये सुनो, ये करो, वो करो, हमको ही यहां वहां दौड़ाता है। और फिर होता क्या है कि खुद शक्तिशाली बन रहा है। काम वासना जैसे कि एड्स वायरस हमारे शरीर से सब कुछ ले, जो भी हम खा रहे हैं वो उसमें से लेकर वो शक्तिशाली बन रहा है, बिकम स्ट्रांग। वैसे ही काम वासना हमारी इंद्रिय मन और बुद्धि को लेकर खुद शक्तिशाली बन रहा है और फाइनली कर क्या रहा है, डिस्ट्रॉयज द बॉडी। एक मैं जब बॉम्बे में एक यूनिवर्सिटी में प्रीचिंग करता तो एक व्यक्ति, वो PhD कर रहा था इसके ऊपर, रिसर्च वैक्सीनेशन, एड्स वैक्सीनेशन के ऊपर। तो उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि ये जो एड्स वायरस है, ये अंग्रेजी में जैसे होते ना, जिसको कहते हैं शेप शिफ्टर्स, एड्स वायरस इज लाइक दैट, इट कैन शिफ्ट इट्स शेप, चेंज इट्स शेप। अगर कोई वैक्सीन भी अंदर उसके डालता है उसको अटैक करने के लिए, मान लो कि एड्स वायरस का एक सर्टन कोड है, कोई कोड का वो वायरस है, तो उस कोड को खत्म करने के लिए अगर कोई दवाई भी डाल रहा है उसके शरीर में, तो वो उसको समझ जाता है कि ये कोड की दवाई आ रही है मुझे मारने के लिए, वो अपना कोड बदल देता है, वो एड्स वायरस अपना कोड बदल देता है। तो जो वैक्सीन है वो कंफ्यूज हो जाता है, अरे मेरे को तो ये कोड के द्वारा अंदर भेजा था इसको मारने के लिए, ये तो इसने अपना रूप ही बदल लिया। जैसे कंस जो ये राक्षसों को भेजता था, ये सब जैसे पूतना, पूतना का एक नाम था खेचरी, तो पूतना जो थी वो अपना अलग अलग रूप ले सकती थी। उस समय उसने क्या रूप लिया था, एक सुंदर स्त्री का रूप लिया था, वो अलग अलग रूप लेकर कहीं पर भी आक्रमण कर सकती थी। तो वैसे ही एड्स वायरस है, अलग अलग रूप ले लेता है, और ऐसे रूप लेता है कि जैसे पुतना ने कैसे रूप लिया था, एकदम सुंदर लक्ष्मी का रूप लिया था, और उसका स्वागत किया ब्रजवासियों ने, अरे अरे आओ। तो वैसे ही ये एड्स वायरस इसका, वैसे ही काम वासना भी, सब लोग उसका स्वागत करते हैं, आओ आओ, कहिए ना, टीवी के रूप में करते हैं, कहिए ना अलग अलग तरीके से, अपने घर में उसका स्वागत करके, उसकी आरती उतार के उसकी प्रतिष्ठापना करते हैं। और ऐसा नहीं कि एक बार प्रतिष्ठापना करने के बाद फिर कोई उसको पूछ नहीं रहा है, रोज सुबह से शाम रात तक उसकी आरती उतारना, भोग चढ़ाना, सब कुछ चलता रहता है। तो ये उसके साथ तुलना जो भगवान कह रहे हैं कि कैसे निवास स्थान के ऊपर कब्जा कर कर वो काम वासना प्रहार करता है। अब भगवान ने आज के श्लोक में ये जो ज्ञान आवृत कर देता है काम वासना, इसके विषय में कहा है। तो हमारे आचार्य कहते हैं कि ज्ञानम आवृत्य देहिनम का अर्थ है कि सामान्य विवेक बुद्धि हर लेता है, उसको कोई बहुत बड़ा आवरण डालने की जरूरत नहीं है काम वासना को। ऑर्डिनरी विवेक बुद्धि, डिस्क्रिमिनेशन पावर, इसलिए भगवान ने जो दूसरे अध्याय में कि हम शरीर नहीं हम आत्मा है, ये सामान्य विवेक बुद्धि इस्तेमाल कर कर भी कोई पता लगा सकता है कि मैं आत्मा हूं शरीर नहीं। परंतु काम वासना सबसे पहले क्या करता है कि इंद्रियों के ऊपर कब्जा कर कर हमें यह विश्वास दिलाता है कि तुम शरीर हो और ये तुम्हारी इंद्रियां, और इसी के द्वारा तुम्हें संतुष्टि मिलेगी। तो हमारी जो बेसिक विवेक बुद्धि है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ भगवद गीता, उसके ऊपर आवरण आ जाता है। तो ये ज्ञानम आवृत्य। तो हमने 38वें श्लोक में ज्ञान के उदाहरण देखे थे कि अग्नि का जो उदाहरण भगवान ने दिया 38वें श्लोक में, तो अग्नि का स्वरूप क्या है, प्रकाश एवं शुद्धता। अग्नि किसी भी वस्तु को शुद्ध करती है और अग्नि प्रकाशमय करती है किसी भी वस्तु को। तो ज्ञान उसी प्रकार से हमें शुद्ध करता है और हमारे जीवन को प्रकाशमान बनाता है। दूसरा उदाहरण जो भगवान ने दिया था दर्पण का, कि दर्पण से हम अपने आप को देख सकते हैं, वैसे ही ज्ञान से हम अपने आप का परिचय जान सकते हैं कि मैं कौन हूं। और फिर तीसरा उदाहरण शिशु का, कि जब शिशु की उत्पत्ति होती है तो उसके अंदर आनंद और एक नया उत्साह कुछ उत्पन्न हुआ है वो होता है। तो ज्ञान हमारे अंदर उत्पत्ति कराता है और आनंद दिलाता है। ज्ञान के वजह से उत्पत्ति होती है, ज्ञान के वजह से आनंद। तो ये सब ज्ञान के स्वरूप भगवान बताएं 38वें श्लोक में। और आज के श्लोक में जो भगवान ने बताया ज्ञानम आवृत्य देहिनम, कि काम वासना ये सबको आवृत कर देता, अर्थात हमारी शुद्धता, हमारे प्रकाश को, हमारे स्वपरिचय को, हमारे आनंद को और हमारी उत्पत्ति को ढक देता है ये काम वासना। तो ज्ञानम आवृत्य देहिनम का संबंध 38वें श्लोक से इस प्रकार से है। अब भगवान ने आगे कहा एतर विमोहत्येश, कि विमोहन शब्द जो भगवान ने इस्तेमाल किया है उसका अर्थ है विशेष रूप से मोहित होना। इसे भगवान का नाम है मोहन, कि भगवान जो मोहित करते हैं, परंतु वो शुद्ध तरीके से। यहां पर विमोहन जो काम वासना के विषय में भगवान कह रहे हैं कि विशेष रूप से मोहित कर देता है। तो पतंजलि योग सूत्र में काम वासना या क्यूपिड के 5 बाण बताए गए हैं, 5 arrows ऑफ क्यूपिड। उसके अंदर सबसे पहला बाण है विमोहन, जो भगवान कह रहे हैं आज के श्लोक में वो काम वासना का सबसे पहला बाण, और बाकी के 4 बाण बताए गए हैं, स्तंभन, उन्मादन, तपन, शोषण, फैसिनेशन, स्टुपिफैक्शन, इंटॉक्सिकेशन, बर्निंग, एनस्लेवमेंट। खैर हम इसके ऊपर अभी इतनी चर्चा नहीं करेंगे। इसके अंदर हम ये क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि जो सबसे पहला बाण है काम वासना का, द फर्स्ट एरो ऑफ क्यूपिड इज विमोहन। और वो विमोहन ऐसा है कि उसमें समझ में नहीं आता है कि वो शत्रु है या मित्र है। इसलिए बलदेव विद्या भूषण उस विमोहन की व्याख्या करते हैं 2 तरीके से। वो कहते हैं विमोहन के दो अर्थ हैं, कि शत्रु को अपना परम मित्र समझना और मित्र को अपना परम शत्रु समझना। देखिए दोनों तरीके से ये काम वासना अटैक करता है, कि जो हमारे भगवान हमारे हृदय के अंदर स्थित हैं उनको तो हम परम शत्रु मानते हैं जो हमारे मित्र हैं, और काम वासना को हम हमारा परम मित्र मानते हैं जो हमारा परम शत्रु बनकर अंदर प्रवेश किया है। एक बार एक चोर को पकड़ा तो उसको कोर्ट में ले गए, तो कोर्ट में ले जाने के बाद जज पूछता है कि भाई तुमने चोरी की, इस व्यक्ति के पैसे लिए। उसने कहा नहीं साहब, इसने निकाल के दिए। निकाल के दिए मतलब मैंने चाकू दिया दिखाया, इसने पैसे निकाल के दिए। अब देखो वही चोरी की स्थिति को वो कैसे प्रस्तुत कर रहा है कि मैंने चोरी नहीं किया, पूछो इसने पैसे निकाल के दिए कि नहीं दिए। तो उसको पूछा गया, उसने बोला हाँ मैंने निकाल के दिए, लेकिन कौन सी स्थिति में दिए, जब मैंने इसने चाकू दिखाया। तो उसने देखिए वो जज के जो वर्ड्स हैं उसको घुमा फिरा कर वो अपने आप को मासूम साबित कर दिया। आप बोल रहे हो कि मैंने इसके पैसे लिए, नहीं इसने दिए। अब मैं चाकू दिखाऊं ना दिखाऊं वो क्यों निकाल के दिया पैसा, गलती उसकी है ना। तो वैसे ही एक बार एक लड़की, वो उसका किसी के साथ प्रेम हो जाता है, तो वो उस लड़के को अपने पिताजी से मिलाने लाती कि इसी के साथ मेरे को शादी करनी है तो पिताजी को पहले संतुष्ट कर दो। तो पिताजी के पास लाती है, तो पिताजी देखता है उस लड़के को, देखता है पूछता है क्यों भाई तुम बताओ क्या तुम्हारे अंदर योग्यता है कि तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो, तो काम धंधा क्या करते हो पहले बताओ। तो वो कहता है कि काम धंधा तो अभी तक मिला नहीं है, कल ही मैं जेल से छूट के आया। बोलता है तुम्हारी हिम्मत भी हो रही है, तुम बोल रहे हो मुझे कल जेल से छूट के आए हो और बोल रहे हो कि मेरी बेटी से तुमको शादी करनी है, जेल क्यों गए थे। तो कहता है मैंने कत्ल कर दिया था एक, उसके लिए जेल गया था। कत्ल कर दिया, किसका कत्ल किया। मैं उस व्यक्ति जिसका मैंने कत्ल किया, मैं उसे कुछ मांग रहा था, उसने मना कर दिया देने की, तो मैंने उसका कत्ल कर दिया। भाई क्या मांग रहे थे, मैं उसकी बेटी से शादी करना चाहता तो उसने मना कर दिया तो मैंने उसका कत्ल। तो ये सुनने के बाद ये कहता है अच्छा मुहूर्त निकालो भाई, पंडित जी को बुलाओ मुहूर्त निकाल। तो जो ये काम वासना है ये अपने आप को हालांकि शत्रु है लेकिन एकदम मासूम चेहरा कर प्रस्तुत करता है कि मुझसे बड़ा हितैषी तुम्हारा कोई नहीं, देर इज नो बिगर वेलविशर देन माई सेल्फ ऑफ यू। तो इसलिए विमोहन की बलदेव विद्याभूषण कह रहे हैं, विमोहन का अर्थ यहां पर है शत्रु को अपना परम मित्र समझना, मित्र को अपना परम शत्रु समझना। तो विमोहन के कुछ उदाहरण यदि हम लें, सबसे पहले अजामिल। अजामिल उसने उस वैश्या के साथ विवाह किया और अपनी पत्नी को घर से बाहर, वो शादीशुदा था, पत्नी को बाहर निकाल दिया, माता पिता को निकाल दिया, जो उसके सगे संबंधी थे उनको बाहर निकाला और जो ये वैश्या थी उसको सगे संबंधी बना लिया। इसको कहते हैं विमोहन, कि हम भी अजामिल की तरह हमारे भगवान को तलाक देते हैं और वैश्या से शादी करते हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि अजामिल बहुत पतित था, उसका उदाहरण है छठे स्कंद में, मैं तो नहीं, हम सब की कथा है वो, वी हैव डिवोर्स्ड कृष्णा एंड वी हैव मैरिड लस्ट, जस्ट लाइक अजामिल डिड, डिवोर्स्ड हिज ओन वाइफ एंड मैरिड दैट प्रोस्टिट्यूट. दूसरा उदाहरण नलकुबर मणिग्रीव का, फिर से कि नलकुबर और मणिग्रीव को उसके उद्धार करने के लिए नारद मुनि पहुंचे वहां पर जब वो ऐसे पाप कृत्य में थे, और नलकुबर मणिग्रीव ने वो जो पाप कृत्य कर रहे थे उसको तो मित्र माना और नारद मुनि को शत्रु माना. इसको बोलते हैं विमोहन, कि नारद मुनि को मित्र मानना चाहिए था, उनको शत्रु मान रहे थे दोनों, और जिस काम क्रीड़ा में वो लगे हुए थे उसको अपना मित्र मान रहे थे. फिर धृतराष्ट्र का उदाहरण, कि धृतराष्ट्र शकुनी दुर्योधन दुशासन इनको तो अपना मित्र मानता था, और विदुर जो कि उनको हर समय अच्छी शिक्षा देते थे, विदुर को अपना शत्रु मानता था. भीष्म पितामह विदुर, यहां तक कि बाकी के पांचों पांडव, उनको तो अपना शत्रु मानता था, और शकुनी इत्यादि इनको धृतराष्ट्र अपना मित्र मानता था. और अंतिम उदाहरण रावण का, रावण को अच्छी सीख दी, यहां तक कि कुंभकर्ण ने भी रावण को कह दिया कि अरे तू बाज नहीं आएगा, तेरे पास इतनी पत्नियां हैं, रानी पटरानियां हैं, क्यों तू यहां वहां मुंह मारता रहता है. तो कुंभकर्ण ने भी समझाया, विभीषण ने समझाया, कितने लोगों ने समझाया, नहीं. तो रावण जिस जो उसके अच्छे मित्र बन सकते थे उनको तो उसने बाहर निकाला विभीषण को, और फिर जो उनको रावण को ये कह रहे थे कि हाँ तुम्हारे जैसा ये ना राजा सम्राट कोई नहीं, और तुमने जो किया बहुत बड़ा हीरोइज्म, उसको बोल रहे थे, रामायण में मेंशन है देयर इज नो हीरो लाइक यू. तो आगे चल के फिर पता लगा कि क्या था वो, अभी दशहरा आ रहा है. तो ये उदाहरण है कि जिन्होंने अपने मित्रों को शत्रु माना और शत्रुओं को मित्र माना. अच्छा, ये एक बहुत ही विशेष उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा. ये एक प्लांट है, एक पत्ता है, पत्ता ये आपको जो दिख रहा है ना, ये एक पत्ता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप. ये पत्ता कीड़ों को खाता है. ये इसकी एपेटाइट क्या है, इसका भोजन क्या है, ये कीड़ों को खाने वाला पत्ता है, मतलब नॉन वेजिटेरियन प्लांट है, इट्स अ नॉन वेजिटेरियन प्लांट. तो इसकी विशेषता आज के श्लोक से इसका संबंध क्या है, ये छोटा सा वीडियो आपको हम दिखाएंगे अभी. तो इसके आज के श्लोक से संबंध क्या है, कि ये जो इसके अंदर का भाग है, द इनर पोर्शन ऑफ दिस लीफ ऑफ दिस वीनस फ्लाई ट्रैप, इट हैज वेरी स्वीट अरोमा, बहुत सुंदर सुगंध है इसके अंदर, और जो कीड़े या कोई मक्खी या कोई मकड़ी उस सुगंध से आकर्षित होकर उसके अंदर बैठने का प्रयास करते हैं और उसको खाने का प्रयास करते हैं, वो जो फ्लूइड निकलता है इसके अंदर है ना, फ्लूइड निकलता है, वो जो अंदर का पोर्शन है उसको खाने का प्रयास करते हैं और सूंघने का प्रयास करते हैं. और एक्चुअल वो है क्या, वो बटन्स हैं, वो अंदर है, वो ऐसे ऐसे बटन्स हैं कि वो अंदर बैठ के जब उसको खाने का प्रयास करते हैं तो ये बंद हो जाता है, और वो जो इतना सुगंधित फ्लूइड मान के कीड़े बैठते हैं वो उसका डाइजेस्टिव जूस रहता है, जो उन कीड़ों को डाइजेस्ट करता है फिर बाद में. तो ये हम उदाहरण दे रहे हैं, लस्ट इज लाइक दैट, इट्स लाइक वीनस फ्लाई ट्रैप, इट हैज स्वीट अरोमा, सो कॉल्ड स्वीट अरोमा, वेरी अट्रैक्टिव फीचर्स टू कैप्चर अस. तभी इसमें आप देखो, एक बंदे ने एक वीडियो लिया है कि एक फ्लाई को कैसे पकड़ता है, एक्चुअल लाइव फ्लाई ट्रैप कैसे हुआ है उसका वीडियो है। तो अभी धीरे धीरे वो अट्रैक्ट हो रहा है, वो जो मक्खी है। वो देखो उसको वो डंडी भी दिखाने से उड़ नहीं रहा है, वो इतना अट्रैक्ट हो गया उससे। इसमें एक और सीख देखो कि पोजिशनिंग, वो जब तक पूरा अंदर पोजिशन नहीं लेता तब तक बंद नहीं होता है वो। तो काम शत्रु भी वैसे ही पोजिशनिंग पूरा अच्छा करता है अपना। तब किया क्या अभी इसने, अब वो जो भी वो एरोमेटिक फ्लूइड जो निकाल रहा था वो उसका डाइजेस्टिव जूस बनता है। अब उसका डिनर टाइम चालू हो गया, महाप्रसाद बोल दिया उसको। स्विच ऑन द लाइट्स। तो ये है, ये वीनस फ्लाई ट्रैप। ऐसे बहुत से अलग अलग पत्ते हैं, एक पिचर प्लांट करके है, वो भी ऐसा ही है। उसके अंदर वो कीड़ा बैठता है, वो अंदर उसको खींच लेता है। तो यहां पर आपने देखा कि जब तक कि उसका पोजिशनिंग पूरा अच्छी से हुआ नहीं था तब तक वो बंद नहीं हुआ। तो वैसे ही काम वासना अटैक कब करता है, जब अपना पोजिशनिंग बराबर कर लेता है। कहां पर, आज के श्लोक के अनुसार, इंद्रियां, मन और बुद्धि। तो अब हमारी कंक्लूडिंग स्लाइड्स है कि ये जो तीन स्थितियां हैं, जब काम वासना ने मेरी इंद्रियों, मेरे मन और मेरी बुद्धि के ऊपर कब्जा कर लिया है, तो ऐसी स्थितियों में मुझे करना क्या है। तो फर्स्ट सिटिंग प्लेस, लस्ट की फर्स्ट सिटिंग प्लेस क्या है, द फाइव सेंसेस, द फाइव नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस। तो इसके संदर्भ में ये श्लोक जो हम इसके विषय में बोल रहे थे, इंद्रियवान, जिसमें हमारे जीव को, आत्मा, शरीर को बोला गया है, कोनु राजन इंद्रियवान मुकुंद चरणाम्बुजम न भजे सर्वतो मृत्युर उपास्याम अमरोत्तमई। तो ये है महाराज निमि और नव योगेंद्र के बीच में वार्तालाप 11वें स्कंद में। तो यहां पर वो कहते हैं महाराज निमि को, माय डियर किंग, इन द मटेरियल वर्ल्ड द कंडीशन सोल्स आर कन्फ्रॉन्टेड बाय डेथ एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ, देयरफॉर हु अमंग द कंडीशन सोल्स वुड नॉट रेंडर सर्विस टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड मुकुंद हु इज वर्शिपेबल इवन फॉर द ग्रेटेस्ट ऑफ लिबरेटेड सोल्स। तो जीव गोस्वामी इस श्लोक की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हम लोग जो इंद्रियवान हैं, कोनु राजन इंद्रियवान, कि कौन इंद्रियवान, मतलब हम लोग सब, कौन ऐसा इंद्रियवान नहीं होगा जो अमर बनने के लिए अपनी इंद्रियों को भगवान के सेवा में नहीं लगाएगा, मुकुंद, भगवान मुकुंद के चरणों के सेवा में नहीं लगाएगा। तो रेमेडी क्या है कि काम वासना ने हमारी इंद्रियों के ऊपर कब्जा किया है। तो इस श्लोक में नव योगेंद्र कह रहे हैं कि रेमेडी है कि उन्हीं इंद्रियों को हम मुकुंद की सेवा में लगाए। तो अपने आप वो जो काम वासना ने अपनी जो स्थिति ली है वो फीकी पड़, वो कमजोर होता जाएगा। जब इंद्रियों को डायरेक्टली, जो जो हमारी पांच ज्ञानेंद्रियां, उसको डायरेक्टली, जैसे हमारे अम्बरीश महाराज ने किया, तो ये रेमेडी है लस्ट को कमजोर करने का इस श्लोक के अनुसार। फिर जो दूसरा स्थान काम वासना ने लिया वो है मन। तो मन के लिए प्रसिद्ध श्लोक भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशंति यद्वत तद्वत कामायम प्रविशंति सर्वे स शांतिम आपनोति न काम काम। तो इसके अंदर भगवान तुलना कर रहे हैं कि एक जो प्रगत व्यक्ति है, एडवांस्ड पर्सन, उसका जो मन है वो समुद्र के समान है. ही हैज एन ओशियनिक माइंड. इच्छाएं मन के अंदर आए, कितनी भी आए, जैसे समुद्र के अंदर कितनी भी नदियां आए, समुद्र जो है वो अपने तट के बाहर नहीं जाता. तो वैसे तो चाहे कितनी भी इच्छाएं आए या जाए, चाहे धूप में कितना भी पानी वाष्प के रूप में चला जाए या वर्षा में कितना भी पानी समुद्र के अंदर आए, एक जो ज्ञानी पुरुष है जिसका मन समुद्र के समान विशाल है वो उससे विचलित नहीं होता. तो मन के ऊपर जो काम वासना ने अपना कब्जा किया है उसके लिए उपाय भगवान यहां पर क्या बता रहे हैं, बीइंग इनडिफरेंट. The thoughts will come and go, the desires, the lusty desires will come and go. A thoughtful person is indifferent to that. और फिर इंटेलिजेंस जो कि थर्ड सिटिंग प्लेस है काम वासना की, तो उसके संदर्भ में यह प्रसिद्ध श्लोक दसवें अध्याय से, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम ये न माम उपयान्ति थे. जब तक कि हमें भगवान द्वारा दी गई बुद्धि, भगवान यहां पर क्या बोल रहे हैं, ददामी बुद्धि, मैं वो बुद्धि देता हूं, जब तक कि भगवान के द्वारा वो बुद्धि हमें प्राप्त नहीं होती तब तक काम वासना ने जो बुद्धि के ऊपर कब्जा किया है हम उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते. इसलिए यदि हम इन तीन स्थितियों को देखें तो इंद्रियों के लिए कृष्ण सेवा जो हमने ग्यारहवें स्कंद से श्लोक लिया, मन के लिए जो हमने दूसरे अध्याय से भगवद गीता के श्लोक लिया इनडिफरेंस, और इंटेलिजेंस के लिए सतत प्रीति भजन की बुद्धि. व्हेन वी प्लग इन अवर इंटेलिजेंस इन ऑलवेज हियरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. तो भगवान कह रहे हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति की, सतत युक्त हर समय जो युक्त रहता है मुझ में, परंतु कैसे, एक्सटर्नली नहीं, भगवान कहते हैं प्रीति से. ऐसा नहीं कि हम लोग, कई लोग बोलते हैं ना मैं इस्कॉन में जॉइंट हो गया, बहुत लोग बोलते हैं मैं जॉइंट हो गया इस्कॉन में. तो भगवान बोलते हैं खाली जॉइंट होने से नहीं होगा, प्रीति से, प्रीति के साथ हमको उनका भजन करना है. तो केवल ज्वाइन करने से कुछ नहीं होने वाला है और केवल भजन करने से भी कुछ नहीं होने वाला है. जो सबसे महत्वपूर्ण वर्ड क्या है, प्रीति पूर्वकम, प्रेम से, जब हम हृदय से वो करेंगे तब जाकर ददामि बुद्धि, तब जाकर हमें वो बुद्धि मिलेगी और वो बुद्धि से फिर हम उस काम वासना के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं जिसने हमारी बुद्धि के ऊपर कब्जा किया हुआ है. तो थोड़ा ये आज का श्लोक टेक्निकल था, परंतु इसको हमारे आचार्यों ने बहुत अलग अलग श्रीमद् भागवत और भगवद गीता के श्लोकों के द्वारा और उनकी व्याख्याओं के द्वारा सरल तरीके से हमको समझाने की कोशिश की. आशा करते हैं कि आप समझे होंगे कि आज का जो श्लोक और 38वां श्लोक उसका कंपैरिजन जो किया है बलदेव विद्याभूषण ने, और फिर जो तीन निवास स्थान हैं और उन तीन स्थितियों में हम कैसे इस पर विजय प्राप्त कर सकें ये भगवान ने बताया. और अब जो अगला श्लोक हम अगले बुधवार को लेंगे, हालांकि अगले बुधवार को आपको हम एक शुभ समाचार देना चाहेंगे कि अगले बुधवार का गीतामृत कार्यक्रम श्रीमान गौरांग प्रभु द्वारा दिया जाएगा, तो वो 1 तारीख को आ रहे हैं और 1 तारीख को उनका एक सेमिनार है लेसन्स ऑन लीडरशिप बाय लॉर्ड चैतन्य, तो वो ट्यूसडे है 1 तारीख, तो 1 तारीख को यहाँ पर मंदिर में ही उनका ये सेमिनार होगा. आप लोग सभी आमंत्रित हैं उसके लिए. और फिर 2 तारीख को जो गीतामृत है वेडनेसडे, वो शाम का वो देने वाले हैं. तो उसके बाद वाला जो हमारा गीतामृत होगा उसमें ये जो श्लोक हम लेंगे 3.41, उसके अंदर भगवान अब बताने वाले हैं इस पापी काम शत्रु का हम दमन कैसे करें या उसका महत्व क्या है उसको दमन करने का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद भगवद गीता की।